الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ردائي، سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مبارك مفهوم ہے، الصبر ردائي، کہ صبر میری چادر ہے. چادر انسان اپنے اوپر اوڑھتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ صبر کا لفظ جو ہے، اللہ رب العزت نے 90 ٹائمز قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے. اور صبر کہتے ہیں کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو سے رک جانا، سٹاپ کر لینا، پروٹیکٹ کر لینا، تھام لینا. جب کبھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو میرے بھائی، انسان نیچرلی جو ہے وہ اس کو انکمفرٹیبلنس فیل ہوتی ہے. اور جب وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی شکل سے ڈسٹربنس جو ہے شو کرتا ہے. اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بعض اوقات تو پھر زبان سے وہ شکوے، شکایت، کمپلینس وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبر کرنے کی بجائے اب یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، شاید لڑائی بھی شروع کر دیں، غصے میں بھی آ جائیں. تو انسان کا ایک تو اپنے جسم کو بے قرار کرنے سے روک لینا، انریسٹ ہونے سے روک لینا، اور دوسرا اپنی زبان سے کمپلین کرنے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لینا، اس کا نام ہے صبر. کیونکہ جب بھی انفیوریبل سچویشن ہوگی تو کیا ہوگا کہ انسان زبان سے بھی کمپلین کرے گا اور اپنی باڈی ایکشن سے بھی وہ اس کو شو کرے گا. تو باڈی ایکشن نہ کرنا انفیوریبل سچویشن میں، اور زبان سے کمپلین نہ کرنا انفیوریبل سچویشن میں، اس کا نام ہے صبر. اور بے صبری یعنی صبر نہ کرنا، امپیشنٹ ہو جانا. اب اس کے بھی یوں سمجھے وہی بات، کہ پہلی بات کہ انسان لوگوں کے سامنے کمپلین کرتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کے جسم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ بے صبری کہلاتی ہے. ان دونوں چیزوں سے بچ جانے والے کو صابر کہتے ہیں، کہ وہ بندہ صبر کرنے والا ہے. اب دیکھو، دنیا کے اندر کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو انفیوریبل سچویشن فیس نہ کرنی پڑے. ایسے ناموافق حالات ہر بندے پر آتے ہیں. یہ زندگی ہے بھائی، اس میں ایسی سچویشنز کا آ جانا کوئی انیوژل سی بات نہیں ہے. اور جب ایسی سچویشن آئے گی تو صاف ظاہر ہے انسان پریشان بھی ہوگا. اب جہاں بیٹھے گا بھائی، وہاں پر وہ اپنی اس سچویشن کو ڈسکس کرے گا تاکہ لوگ اس پہ رحم کریں. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے اس کی، کہ وہ لوگوں سے جو ہے ان کی جو ہے اوپینین لینا چاہتا ہے، ان کو اپنے ساتھ فیوریبل کرنا چاہتا ہے. مثلا گھر کے اندر ساس اور بہو کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے، اب دونوں تکلیف میں ہوتی ہیں، اور دونوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا جا کر اپنی سچویشن کو ڈسکس کرتے ہیں، सास भी लोगों में बैठ के बातें करती है कि भाई बस अल्लाह माफ करे, आज की लड़कियां तो मुसीबत ही है। और बहू बैठी हुई हर जगह कि बस सास तो होती ना, काश के मेरे घर वाले सोच समझ के मेरा ब्याह करते, ऐसे घर में भेजते जहां ये सास किस्म की कोई चीज ना होती। तो अब वजह क्या है, या ऐसा उदास चेहरा बना के बैठ जाएगी, चुप लगा के बैठ जाएगी, देखने वाला देखेगा और पूछेगा कि भाई आर यू ओके, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, तो कहेगी बस क्या करूं, कहेगी कुछ तो बताओ आखिर हुआ क्या है। अब वो कर क्या रही है, बेसिकली लोगों को अपने साथ मिला रही है और अल्लाह ताला का साथ छोड़ रही है। लोग तो उसमें तरस खाने लग जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इस बात से नाराज हो जाएंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर एक मुसीबत आ ही गई थी भाई, या तो सास खराब होगी या बहू खराब होगी, यानी वही औरत जब बड़ी होगी तो उसकी बहू खराब आ जाएगी, या बहन से तकलीफ होगी, या भाई जो है वो केयर नहीं करता होगा। और जो घर गृहस्थी वाली जिंदगी नहीं गुजारती और जॉबों पे जाती हैं, वहां बॉस टफ होगा या सुपरवाइजर तंग कर रहा होगा या कोई कोलीग जो है उसकी शिकायतें कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं से तो फंसी होगी, मुसीबत तो लगी रहेगी। अब ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो गीबत शुरू कर देते हैं, मखलूक के सामने वो शिकवे शुरू कर देते हैं, शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, और ये कंप्लेन करने से अल्लाह ताला की तरफ से वो महरूम हो जाते हैं। अगर अल्लाह ने उनको ऊपर कोई रहम करना था, कोई मदद करनी थी, अब ये क्योंकि खुद एफर्ट कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी फिर इनको जो है बंदों के हवाले कर देता है। चार बंदे अगर फेवर करते हैं तो भाई आठ उसकी मुहाफत भी करते हैं, वो भी कह देंगे कि भाई तुम कौन सी कम हो, या सुनकर कहेंगे कि यार इनकी बहू बड़ी तेज है, बड़ी बातें बना रही थी, अब उनको भी चांस मिला, उन्होंने आगे गीबत कर दी। इसको तो बस बैठ के सुन लेंगे और दिल में कहेंगे कितनी बेवकूफ है, घर में हर चीज मिली हुई है, कदर ही नहीं कर रही, या फिर मिर्च मसाला लगाएंगे और ज्यादा भड़काएंगे ताकि इसका घर बर्बाद हो, ये क्यों मजे की जिंदगी गुजार रही है, ये भी उस आग में जले जिसमें हम फंसे हुए हैं। या फिर अगर बड़ी की हम दर्द मिल जाएगी तो वो दो चार और आइडिया दे जाएगी कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और ऐसे और वैसे करने से घर बनेगा नहीं बल्कि घर बर्बाद होगा, वो सहेली बनकर तबाही फेर के चली गई। तो भाई लोगों के सामने काबिल रहम बनना ये है एक मुसीबत का रिएक्शन। अगर कोई मुसीबत आई तो पहली बात क्या होगी कि लोग जो है लोगों के सामने अपने आप को काबिल रहम बनाना शुरू कर देता है इंसान। और अगर लोग ना सुने और इसको मुसीबत आई हुई है, परेशानी है, तो अब हालात को फेस नहीं कर सकती क्योंकि अपने अंदर भाई टैलेंट नहीं है और जो है दिल में मोहब्बत भी नहीं है, कोई सिचुएशन ऐसी अजीब हालत है, तो क्या होगा, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, अब डिप्रेस हो जाएगी, है जी? तो डिप्रेशन भी तो आखिर एक बीमारी है, और डिप्रेशन में इंसान बाज औकात शिकवे अल्लाह ताला के भी करता है, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मुझे पता नहीं कहाँ भेज दिया, या कोई भी और मिसाल समझ ले, मैं तो समझाने के लिए घरेलू मिसाल दे रहा हूं। और तीसरा रिएक्शन ये होता है कि जब कोई मुसीबत आए तो इंसान इसको मखलूक की तरफ से न समझे बल्कि ये समझे कि वल कदरी खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला की तरफ से खैर भी आती है और शर भी आता है, तो भाई क्या हो गया, मुझे अगर कोई जो है मुसीबत भेजी गई तो अल्लाह की तरफ रुजू करूंगा तो खुद ब खुद ये मसला हल हो जाएगा। चुनाचे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई कि जिसकी वजह से मुझ पर यह मुसीबत आ गई। तो अब अगर आदमी हर चीज ठीक कर रहा है फिर भी मुसीबत है, तब भी वो इस पे खुश होते हैं कि अल्लाह की तरफ से, बीवी तो अल्लाह की है। तो अब अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना, मुसल्ला बिछा लेना, इबादात में लग जाना, अस्तगफार की तस्बीह करना, तो ये सब एक तीसरा रिएक्शन हो गया। तो पहला रिएक्शन क्या है, इंसान के ऊपर मुसीबत आई और वो मखलूक की तरफ भागा, यानी अपने मददगार उसने अल्लाह की बजाय बंदों को बनाया कि ये मेरी फेवर करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे, मुझे बचाएंगे। जब उसने अल्लाह को छोड़कर मखलूक की तरफ वो भागा, अल्लाह ने उसको मखलूक के हवाले कर दिया। ऐसे बंदे सारी जिंदगी लोगों को अपनी कंप्लेंट सुनाते सुनाते इस दुनिया से मर जाते, और अगर मखलूक नहीं सुनती तो दूसरा रिएक्शन होता है कि इंसान डिप्रेस होकर बैठ जाता है। मुसीबत आई, अब कोई काम करने को जी नहीं चाहता, पड़े हुए हैं, मायूसी है, मेरे तो हालात ही ऐसे हैं, जनाब क्या करें, उसमें से निकल ही नहीं सकते, बस मुसीबत आ गई और ये इनके लिए सारी जिंदगी की मुसीबत बन गई। और तीसरी चीज ये थी कि वो मुसीबत को एडमिट कर लेते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, अपने आप को समझते हैं मेरा कोई कसूर होगा, मैं इस्तग़फ़ार करूं, गुनाहों से माफी मांगू, अल्लाह मेरे मसले को हल फरमा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आखिर अल्लाह ताला मुसीबत भेजते ही क्यों है, जबकि इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम, अल्लाह ताला तो बंदों के साथ जो है रऊफ और रहीम है, वो तो बहुत बंदों के साथ रहम करने वाले हैं। तो फिर ये मुसीबतें ये तकलीफें भाई अल्लाह ताला क्यों भेज देते हैं, तो भाई सादा सी बात है कि हमें इस दुनिया में भेजा किस लिए गया था, इम्तिहान के लिए भेजा गया था, एग्जामिनेशन रूम में भाई एग्जाम पेपर क्यों आ गया। अब एक इंसान का एग्जाम पेपर क्या होगा, भाई यही होगा कि भाई आपको जो अल्लाह ताला ने ड्यूटीज दी वो आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इन ड्यूटीज के ऊपर कितना सब्र है आपके अंदर, और इसको करते हुए जो तकलीफ आ रही है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको जो है मोहब्बत है। मतलब अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है और मोहब्बत जब करता है तो उसने कोई काम बता दिया, मतलब एक दोस्त है वो दोस्त से मोहब्बत करता है, बड़ी बातें करता है कि जी मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एक दिन उसने कहा कि भाई मेरा फलां काम है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप ये कहने लगे कि भाई किस लिए, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है फला। अब ये जब ऐसी बातें करेगा दोस्त को पता चल जाएगा कि ये झूठा दोस्त है और ना ही ये इसके अंदर सिंसियरिटी है ना कोई लव है। तो भाई जब अल्लाह ताला ने थोड़ा सा टेस्ट भेजा, और अल्लाह नहीं आजमाते इंसान को उसकी उसकी बर्दाश्त ज्यादा, तो ऐसी सूरत में ये इम्तहान की जगह है, इस बात को हम भूल जाते हैं कि अल्लाह की तरफ से आई हुई चीज है। अगर खुशियां आती हैं तो भाई शुक्र अदा करो, और अगर तकलीफ आती है हालात अनफेवरेबल होते हैं तो बर्दाश्त करो। ये दुनिया मसाइलिस्तान है, दर ई दुनिया कसे बेगम नबाशद, अगर अबाशद बनी आदम नबाशद, इस दुनिया के अंदर कोई आदमी भी बगैर गम के नहीं है, कि उसको कोई फिक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, मजे की जिंदगी गुजर रही है। और अगर कोई कहता है ये क्लेम करता है कि वाकई मेरी जिंदगी बड़ी बेगम है, तो शायर कहता है कि फिर वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, वो बनी आदम नहीं है, वो इंसान नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि हो इंसान और इंसान को इस दुनिया में कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि हमने इंसान को मुशक्कत के साथ पैदा किया है, यानी इंसान को इस दुनिया में तकलीफों को फेस करना पड़ेगा। लिहाजा मुश्किलात के आने की वजह क्या हुई, कि अल्लाह ताला ने ये इम्तहान की जगह बनाई है, यहाँ पर मुश्किलात आएंगी और इस पे सबर करना पड़ेगा। अब ये सबर करना भी हकीकत में क्या है, अल्लाह की तरफ से रहमत है। वो कैसे, भाई आप देखें किसी बच्चे को वो अगर कहीं गया और रेडी हो गया, स्लिप कर गया, सारी मिट्टी लग गई, सारा उसने गंदा कर दिया, या छोटा बच्चा होता है, आप देखें उसका डायपर वगैरह चेंज करने होते हैं, वो सारा उसने गंदा कर दिया। अब माँ ने डिसाइड किया कि भाई इसको मैं जरा साफ कर दूं, शावर करा दूं ताकि ये साफ सुथरा हो जाए, चांसा बेटा मेरा बन जाए, नैल कुचाल इसकी दूर हो जाए, पाक और साफ हो जाए। अब उसने क्या किया, अपने बेबी को लिया और उसके ऊपर पानी डाला, उसके ऊपर साबुन लगाया, उसने शैम्पू किया और उसने उसको वॉश करना शुरू किया और ताकि उसकी नैल शैल उतर जाए, उसके हाथ की साफ हो जाए। तो बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है, साफ जहर है, उसके ऊपर पानी डालेंगे छोटे बेबी से, रोएगा शोर मचाएगा। हालांकि माँ तो उसको रहमत कर रही है, उसको साफ कर रही है, अल्लाह ताला भी इसी तरह मुसीबत भेज रहे हैं और उससे हम साफ सुथरे हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह बाज औकात इंसान को डॉक्टर के पास जाना होता है और कोई ऐसी बीमारी होती है तो डॉक्टर जो है वो उसका इलाज करता है, उसको दवाई देता है, दवाई अक्सर कड़वी होती है, छोटे बच्चों की दवाई भी ऐसी होती है, हालांकि उसमें कितनी सारी शुगर डालते हैं फिर भी वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के पिलानी पड़ती है, सिरप ऐसे होते हैं या गोलियां होती हैं बड़ों को, वो भी स्वालो करने में तकलीफ हो रही होती है, या अगर किसी को ऐसी तकलीफ आ गई कि भाई उसको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो अब ये इंजेक्शन जो है लगाना, ये कड़वी दवाई का पीना, टैबलेट्स का खाना, ये सब का सब जो है इसमें जो है बर्दाश्त करना पड़ता है और इसको डॉक्टर को जो है कोई कंप्लेन नहीं करता कि आपने मुझे इंजेक्शन दे दिया, मुझे ये सिरप दे दिया या ये टैबलेट दे दी, बल्कि लोग शुक्रगुजारी करते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा कोई बंदा बीमार है और उसका ऑपरेशन चाहिए तो डॉक्टर साहब के पास वो जाते हैं, डॉक्टर कहेगा भी मैं तो जो है ब्लेड के साथ इसको काटूंगा और अंदर से सारा वो जो भी प्रॉब्लम है उसको काट के निकाल के स्टिचेस करूंगा और उसके बाद इतने दिन आपको तकलीफ रहेगी, चलने फिरने भी में भी तकलीफ आएगी और जनाब ये सारी तकलीफें भी बर्दाश्त करता है और डॉक्टर को फीस भी देता है, वो अपने चार्जेस भी करता है। ये नहीं करता कि भाई ये डॉक्टर साहब आपने तो मेरे पेट काट के रख लिया, ओहो आपने तो कैसी सर्जरी की है, मेरा सारा जिस्म काट दिया। वो तो कहेगा भी मैंने तो आपके साथ रहमत की है, फेवर की है, मैंने सर्जरी की, मैं आपका एनिमी नहीं था। तो एक्जेक्टली इसी तरह अल्लाह ताला भी हमारी सर्जरी कर रहे होते हैं, हम गुनाह कर करके अपने उन ऑर्गन्स को खराब कर रहे होते हैं, अपनी रूह को बर्बाद कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला रहमत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इससे पहले कि इंसान मर जाए और जहन्नम में चला जाए। देखा कि अल्लाह ताला इसी दुनिया में उसको कभी कभी बीमार कर देते हैं, कभी किसी परेशानी और मुसीबत में डाल देते हैं, कभी कोई उसका बिजनेस लॉस हो जाता है, कभी कोई आदमी दूसरा उसको ऐसी बात कह देता है इसके दिल पर लगती है कि ओहो ये क्या कह दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे दुख दिया, अब इसने बर्दाश्त कर लिया तो इसके जो गुनाह था अल्लाह ने उसको धो दिया, साफ कर दिया कि ठीक है आप भी तो गलत कर रहे थे ना। तो अगर आपको कुछ कड़वी गोली मिल गई है और इससे पिछले गुनाह माफ हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, तो इंसान सब्र कर लेता है। तो अल्लाह ताला इस तरीके से कॉम्पनसेट कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरीके से फायदा भी हो जाता है। तो इंसान पर मुसीबत आए तो वो बर्दाश्त करे, लेकिन ये बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल काम, बड़ा ही मुश्किल काम। तो बर्दाश्त कैसे करें, साफ जाहिर है अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये परेशानियां आती हैं। मसलन आप ये देखें कि एक आदमी है वो लेबर जॉब करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसने वहां वजन भी उठाना है, उसने वहां पसीना भी बहाना है और उसने जो है मेहनत करनी है और हार्ड जॉब होती है। अब लोग जो है इस जॉब के लिए भी तो प्रिपेयर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम विद चॉइस जो है वो उसमें जाते हैं, उनको पता है सारा दिन हमने तकलीफ उठानी है और इसमें जो है बर्दाश्त भी करनी है। लेकिन वजह क्या होती है कि भाई इसमें से उनको जो है पैसे मिलेंगे, और एंड पे जो है जब वो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे तो भी जिसका काम किया तो साफ जाहिर है उसको पैसे देगा। तो पैसों के लिए ये हार्ड जॉब वो कर लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं सिक्योरिटी का काम करते हैं। अब रात को बिल्डिंग के अंदर अकेला सिक्योरिटी मैन फिर रहा होता है, सारी रात जागता रहता है, नींद भी उसको आती है, बर्दाश्त करता है। तो अब ये तकलीफ वो उठा रहा है इसलिए कि उसको सैलरी मिलती है, वो अपने माइंड मेकअप करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, कोई बात नहीं अगर रात भर भी जागता रहूंगा तो एंड पर सैलरी भी तो लेके जाऊंगा। इसी तरह बाद औरतें होती हैं, उनके यहाँ बेबी नहीं हो रहा होता, वो दुआएं मांगती हैं, या अल्लाह हमारा बेबी हो जाए, अल्लाह हमें बेटा दे दे। अब वो हालांकि जानती हैं कि अगर मेरा बेबी हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो 9 मंथ में प्रेगनेंसी में रहूंगी, वॉमिटिंग होती है बहुत, इसकी वजह से तकलीफ होती है, और जो है प्रिटी मच बंदा सिक फीलिंग कर रहा होता है। तो सारी चीज के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। बाद माए प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर भी जाती हैं, लेकिन फिर भी दुआ मांगती हैं कि या अल्लाह मेरे बेटा हो जाए, मेरा बेटा हो जाए। बेटे से बड़ा प्यार होता है माँ को। अब बच्चा पैदा हो गया, बस कुर्बान हो रही होती हैं, हालांकि उसकी डिलीवरी के टाइम कितनी तकलीफ उठाई होती है, बच्चे को सीने से लगाती हैं, बड़ी खुश हो रही होती हैं, फिर उसको दूध पिलाती हैं, फिर उसको जो है खाना खिलाना सिखाती हैं, और उसके साथ सोना, उसी के साथ जागना, उसके साथ खेलना, और बच्चा रोए फौरन दौड़ के आती हैं, खुद सर्दी में रहेंगी, बच्चे को गर्म रखेंगी, खुद जागती रहेंगी, बच्चा सो रहा होगा, खुश हो रही होंगी, वजह क्या होती है, ये सारी बर्दाश्त कर रही होती हैं, सब्र कर रही होती हैं, वजह है कि मुझे बेटा मिल गया। बस बेटी की खुशी जो है माँ को इतनी ज्यादा होती है कि जिसकी खातिर वो ये सारी तकलीफ बर्दाश्त करती है। तो देखो भाई, अगर एक बंदा तनख्वाह मिलने के लिए, सैलरी के लिए बर्दाश्त करता है, एक माँ बेटे को हासिल करने के लिए बर्दाश्त करती है, तकलीफें उठाती है, अगर मोमिन ये सोच ले कि भाई मैं तो अल्लाह के लिए बर्दाश्त करूंगा, जो भी तकलीफ आएगी पेशेंस में रहूंगा, कंप्लेन नहीं करूंगा और रिएक्ट नहीं करूंगा, तो क्या होगा बिला आखिर, वो अल्लाह ताला को राजी कर लेगा, है ना, अल्लाह उससे राजी हो जाएंगे। और अगर अल्लाह की रजा की अहमियत होगी दिल में कि ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, तो आप खुद सोचे कि वो ये सारी तकलीफ बर्दाश्त करना कितना आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, फरमाया इजा हब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु फइन सबरा इज्तबाहु फइन रदिया सफा। फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, इजा हब्बल्लाहु अब्दन किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, इब्तलाहु उसको मुबतला कर देते हैं, उसको इन्वॉल्व कर देते हैं किसी मुसीबत में, तकलीफ में, तो इन सबरा जब वो सबर करता है, इज्तबाहु व इन रदियस्तफा, तो अल्लाह ताला उस सबर करने वाले को अपना मुज्तबा बना लेते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं, और अगर इस पे वो खुश हो रहा होता है तो उसको अपना मुस्तफा बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये टाइटल है मोहब्बत के, अल्लाह उनको अता करते हैं। अल्लाह के तो भाई जलाल में भी जमाल है, अल्लाह ताला तो बस हर वक्त जो है मोहब्बत ही करते हैं। हजरत मजजूब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। अल्लाह ताला से मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया इंसान छोड़ देता है, लाख झिड़को अब कहाँ फिरता है दिल, हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। कहते हैं आप जितना मर्जी मुझे पुश करें, दूर करें, जो मर्जी कर ले, डांटे, बस अब तो मुझे मोहब्बत हो गई है। अल्लाह तेरी तरफ से जितनी भी तकलीफें आती रहें, मुसीबतें आती रहें, कोई बात नहीं कि इस मुसीबतों को बस अब तो बर्दाश्त कर लेंगे। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लैसा बिसादिकिन फी दावाहु मन लम यतलज्जज बिस्सर भी मौलाहु, वो मौला की भेजी हुई मुसीबत पर लज्जत हासिल न करे वो अपने दावे के अंदर झूठा है। जिसको अल्लाह की दी हुई मुसीबत के ऊपर मजा न आता हो तो हजरत मारूफ करके फरमाते हैं वो तो बंदा झूठ बोल रहा है। उसको तो ये पेन लेकर मजा आता है, जैसे माँ को बच्चे की तकलीफ उठाकर मजा आता है, इस तरह सच्ची मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब के लिए सेक्रीफाइस करके मजा आता है। वाह मेरे मौला वाह, ये झिड़कियां खाना, ये बर्दाश्त करना, ये सब मजे की बातें हैं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने एक अजीब हकायत लिखी, एक स्टोरी लिखी उन्होंने। फरमाते हैं हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बादशाह गुजरे, किंग थे मुसलमानों के। उनका एक स्लेव था, उसका नाम था अय्यास। ये जो महमूद गजनवी थे इनको अपने इस स्लेव के साथ बहुत मोहब्बत थी, उसको बहुत लाइक करते थे। लेकिन जो दूसरे बादशाह के साथ रहने वाले लोग थे, उनके मिनिस्टर्स थे, वो इतराज करते थे कि भाई हमारा एक स्टेटस है और हमारे इस स्टेटस के होते हुए भी आप एक स्लेव को जो है अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो है इससे हमें बहुत इंसल्ट फील होती है, ह्यूमिलिएशन होती है, हम जो है परेशान होते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो वो कुछ ना कुछ तरीके से जो बादशाह महमूद गजनवी थे उनको कंप्लेन करते थे कि भाई आप इस तरीके से जो है एक लो स्टेटस वाले को हम हाई स्टेटस वालों के सामने प्रेफर करते हैं, हमें इससे तकलीफ होती है। एक दिन महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अच्छा तुम कंप्लेन तो करते हो लेकिन मैं एक दिन तुम्हें प्रूफ करूंगा, तुम्हें इस चीज का आंसर दूंगा जो तुम कंप्लेन कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि भाई जैसे मैं महमूद को कोई स्पेशल फेवर कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ जो है उस इन कंपैरिजन जो है उसको प्रेफर करता हूँ, इसका मैं तुम्हें कोई वजह बताऊंगा, जवाब दूंगा। तो ठीक है, वो मिनिस्टर जो है वो तो कुछ अच्छे बात भूल गए। एक दिन क्या हुआ कि ये सब लोग मौजूद थे, महमूद जो है वो भी स्लेव थे, वो भी वहां पर मौजूद थे। बादशाह ने एक बड़ा कड़वा सा डिस्टेस्ट किस्म का फ्रूट मंगवाया और जो है उसको कटवा कर अच्छी खूबसूरत प्लेट में रखवा कर और उन्होंने जो है जैसे लोगों को दावत देते हैं तो ऐसा उन्होंने डिश जो है वो सर्कुलेट की कि जनाब आप सब लोग खाएं। तो अब एक तरफ से जो मिनिस्टर्स बैठे हुए थे वो उन्होंने जब खाना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया ये तो बहुत डिस्टेस्ट किस्म का फ्रूट है, तो फौरन वो अपने मुंह से उसको निकालने लग गए और स्पिट करने लगे कि ओह ये क्या टेस्ट है, ये तो बहुत ही गंदा टेस्ट है। अब वही डिश जो है महमूद के पास से भी गुजरी, महमूद ने भी उसमें से जो है कुछ फ्रूट ले लिया और मतलब अपने बाउल में कुछ फ्रूट हम ले लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो अब महमूद जो है वो उसको खा रहे हैं ऐसे जैसे बड़ा मजा आ रहा है और बाकी मिनिस्टर्स जो बैठे हुए थे वो तो बस ऐसा था जैसे ऑलमोस्ट वॉमिटिंग करने वाले हों, ये क्या हमारे मुंह में चला गया। तो अब हमने महमूद की तरफ देखा, भाई सेम फ्रूट हमने खाया और हमारी तो हालत ये हो गई कि ऐसे लगता था कि हम वॉमिट कर देंगे, और महमूद तो भाई मजे मजे से खा रहे हैं। तो उनको ख्याल आया कि भाई शायद इसको कोई पता नहीं, डिफरेंट फ्रूट दे दिया, हालांकि डिश तो वही थी, जैसे हम कुछ निकाल लेते हैं। तो उसके पास जो पार्ट आया वो क्या स्पेशल स्वीट था, और बाकी लोगों के पास बहुत ही कड़वा किस्म का आ गया। तो बादशाह ने भी देखा सबको कि भाई ये तो फ्रूट बहुत गंदा फ्रूट था, बहुत सॉरी, लेकिन ये है कि भाई महमूद तो बड़े मजे से खा रहे हैं। तो उन्होंने महमूद को कहा कि भाई क्या ये डिस्टेस्ट किस्म का फ्रूट नहीं है? तो सब लोगों को भाई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, इसका टेस्ट जो है वो कड़वा है। तो उनसे पूछा कि भाई तुम्हें जो पार्ट मिला है फ्रूट का तो वो कैसे था? तो उन्होंने कहा हाँ कड़वा तो है। तो बादशाह ने कहा फिर आप इतने मजे मजे से खा रहे हैं, क्या वजह इसकी? तो फिर महमूद ने कहा बादशाह मैं आपके करीब रहता हूँ और आपके करीब रहने की वजह से कभी मिठाइयाँ खाता हूँ, कभी मजे मजे के फ्रूट खाता हूँ, अच्छा अच्छा खाना खाता हूँ, आज बस ये बाई चांस ऐसा फ्रूट आ गया, लेकिन भेजा तो आपने ही था। तो बस मैंने सोचा कि जिस हाथों से मैंने इतनी दफा अच्छे अच्छे मजे मजे के खाने खाए हैं और आज अगर उसी के ही दिया हुआ फ्रूट डिस्टेस्ट है तो क्या हो गया? फिर मैं आराम से फिर भी खाता रहूं। तो अब बादशाह ने कहा देखो महमूद के अंदर देखो सच्ची मोहब्बत है, तुम जो मिनिस्टर्स बने बैठे हो और अपने आप को सीरियस समझते हो, मैं तुम्हें भी तो आखिर जो है पे करता हूँ, किसी को गवर्नर बनाया हुआ है, किसी को कोई पोस्ट दी हुई है, तो मेरी फेवर तुम्हारी तरफ भी तो है, लेकिन जहां कहीं कोई अनफेवरेबल बात हो गई और इवन जरा सी भी बात कि एक फ्रूट भी आपको डिस्टेस्ट करके दे दिया, आपने उसको ऑलमोस्ट वॉमिट कर दिया, तो देखो इसमें और महमूद में क्या डिफरेंस है, वो ट्रू लव करता है और तुम मेरे साथ ट्रू लव नहीं करते, इसलिए मैं महमूद को प्रेफर करता हूँ ऑब्वियसली। अब यहाँ पर मौलाना रूमी जो है वो एक मैसेज छोड़ते हैं कि देखो अगर एक बादशाह से मोहब्बत करने वाले महमूद जो है वो उसके दी हुई चीज पर सब्र कर रहे हैं और रिएक्ट नहीं करते, ना भूल रहे हैं, ना उनकी बॉडी जो है वो ऐसी हैस्टी कोई बार रिएक्ट कर रही है, तो अब अगर हम इंसान हैं और हम अपने परवरदिगार के बंदे हैं और अल्लाह ताला की बाउंटीज एंड फेवर्स जो है, जो रहमत है वो तो अनकाउंटेबल है और वो तो परसिस्टेंट है, ऐसी सिचुएशन में हम क्यों रिएक्ट करते हैं, हम अल्लाह ताला की कंप्लेन कर देते हैं और हम हैस्ती हो जाते हैं और जो है सब्र नहीं करते, हालांकि तेरा गम भी मुझको अजीज है कि वो तेरी दी हुई चीज है, अगर गम है तो वो भी तो भी अल्लाह का दिया हुआ है, बीमारी आ गई है तो क्या करें, अल्लाह की तरफ से है ना, हत्ता कि अगर मौत भी आ जाए तो नेक लोग तो भाई उसको भी कबूल कर लेते हैं कि आखिर एक ना एक दिन तो मरना है, सबको इस दुनिया से जाना है, तो वो उसको सब्र कर लेते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई चीज पर राजी हो जाते हैं। अब देखो आमतौर पर इंसान जो है सब्र तीन तरह से करना पड़ता है दीनी इतबार से। पहली बात कि भाई अगर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और हमने अल्लाह ताला से एक रिलेशन बना लिया, तो अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली चीज हमें दी वो इस्लाम के जरिए से हमारे ऊपर नमाज को फर्ज किया, पांच वक्त की नमाज पढ़ना नो डाउट कि एक चैलेंज है, आदमी को सुबह को नींद आ रही होती है, उस वक्त उठना, वुजू करना, फिर अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ना, अब ये मुश्किल काम होता है। इसी तरह जोहर के वक्त इंसान अपने स्कूल में या अपनी जॉब पर बिजी होता है, ऐसी सिचुएशन में टाइम ऑफ करना और दौड़ के जाना और नमाज पढ़ना, इस पे सबर करना पड़ता है। इसी तरह इंसान घर आता है जॉब से फारिग होकर, तो इस वक्त फिर असर की नमाज आ जाती है। अब इसने डिनर भी करना होता है और साथ ही मगरब की नमाज भी पढ़नी होती है। अब डिनर कर लिया, मगरब भी पढ़ ली, रात है, घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, बच्चे भी बातें करना चाहते हैं और ये खुद भी सोना चाहता है, लेकिन अल्लाह ने इशा की नमाज रख ली है। तो अब इस पे तो सबर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की बात की आपने, अल्लाह ताला ने जो है टेस्ट भेज दिया। लेकिन जो बंदे सचमुच अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं उनको इससे मजा आता है, ये नमाज फिर उनके लिए मुश्किल नहीं होती बल्कि बहुत आसान हो जाती है। वो तो बल्कि यूं समझते हैं कि भाई अपने महबूब को हमने टेलीफोन डायल कर दिया और थोड़े सा चांस मिल गया, क्या हम बातें कर लेंगे। इसी तरह माल पैसा कमाया और फिर उसमें से ज़कात देनी पड़ती है, बड़ी तकलीफ महसूस होती है कि भाई ये क्या हो गया, पैसे कमाए थे, कितनी मुश्किल से बचाए थे, सारा साल बचाते रहे, एंड ऑफ द ईयर पे अब उसको पे ऑफ करना पड़ गया ज़कात। रमजान का महीना आ गया और खासतौर पे अब गर्मियों में रमजान आ रहा है, अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बर्दाश्त करने की बात होगी। इसके लिए बंदा प्रिपेयर होता है। बाज़ुकात बंदे बीमार भी होते हैं, डायबिटीज है, खाने की सब्र नहीं कर सकते, लेकिन रमजान आया, अल्लाह के नाम पर सब्र किया, हमने देखा जो लोग सब्र कर लेते हैं वो रमजान मुबारक बहुत आराम से गुजार लेते हैं। आम दिनों में अगर इतनी भूख बर्दाश्त करना मुश्किल होती है, रमजान की बरकत से अल्लाह ताला इसको आसान कर देते हैं। इसी तरह हज करना, अल्लाह अकबर, अपने घर अपने बच्चों को छोड़ना और एहराम की पाबंदियां लेना, फिर वहां जाना, ट्रैवलिंग करना और फिर वहां पर भी कॉन्स्टेंटली जो है वो मूवमेंट्स होती हैं, इंसान को सामान भी उठाना होता है और फिर तवाफ करना, इतने क्राउड के अंदर होना, सफा मरवा पे दौड़ना और जो है मीना मुजदलफा अरफात में ठहरना, ये सब एफर्ट करनी पड़ती है, इस पर सबर करना पड़ता है। तो जितना भी दीन है भाई इस पर सबर करता है और आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत दे देते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में सबर के लिए इंसान को पैदा किया। अगर अब सबर नहीं करेंगे तो भाई जहन्नम में भी तो जाके सबर करना ही पड़ेगा ना। जो बंदे कहें कि नमाज पढ़ते हुए मुझे तकलीफ होती है, उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, तो भाई हशर के दिन अगर अल्लाह ने इसी वजह से जहन्नम में डाल दिया कि मैंने ऑर्डर दिया था और तुमने पूरा नहीं किया, जब पूरा नहीं किया तो साफ जाहिर है अब मैं तुम्हें किस लिए जन्नत दे दूं। मेक सेंस कि भाई आपको जन्नत किस लिए दे दी जाए, आपने तो जरा सा भी जो है एफर्ट नहीं की। अब एक आदमी है वो जो है उसको जॉब दी कि ये जॉब करोगे सैलरी मिलेगी, और वो जो है सोता रहे, मजे करता रहे, और जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन आ जाए कि हाँ हाँ मुझे भी सैलरी दे, कहेंगे चलो भागो यहाँ से, किस चीज की सैलरी आपको दी जाए, आप तो सो रहे थे। सारी जिंदगी तो ये मजे करना चाहता है और आखिरत में ये समझता है कि बस अल्लाह फेवर कर देंगे और इसको जन्नत मिल जाएगी, और ये यहाँ कुछ भी एफर्ट ना करे और अल्लाह के हुक्मों पर जरा भी सब्र ना करे। तो ये जो है ताज इलाही पर सब्र करना ये जरूरी चीज है। अब एक और सब्र भी करना पड़ता है और इसको कहते हैं तर्क मासीत पर सब्र करना, यानी अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर लज्जत रखी है, मजे रखे हुए हैं, रंग बरंग है, गुनाह करते हुए इंसान को मजा आता है, नफ्स खुश होता है और डिमांड करता है, और अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है दुनिया को। अब ऐसी वैसी शक्ल वाली जो है पास बैठी है, गुजर रही है, फना है, स्वीट स्वीट टॉक भी कर रही है, और जनाब इंसान का दिल चाहता है मैं जरा इससे बातें करूं, और जब बातें करेगा तो जाहिर है फिर फ्रेंडशिप होने लगेगी, जब फ्रेंडशिप होगी तो किसी न किसी दिन गुनाह भी कर बैठेंगे, अब गुनाह करेंगे उसमें भी मजा आएगा, फिर ये कसमें खाते हैं आपस में, एक दफा गुनाह कर बैठे तो अब कहते हैं कि हम तो सच्ची मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और कभी भी जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से, हमेशा इकट्ठे रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला भी कहते हैं कि हाँ अगर तुम हमेशा इकट्ठे रहने के दावे करते हो तो फिर मैं जहन्नम में भी तुम्हें हमेशा इकट्ठा जहन्नम में डालूंगा, वहां पर भी हमेशा तुम बस रहना और जहन्नम के अजाब चखते रहना। तो मेरे भाई गुनाहों से बचने के लिए बर्दाश्त करनी पड़ती है, आंखों की हिफाजत करनी पड़ती है, ये जुबान से स्वीटी टॉक नहीं करनी होती, ये मना होता है। और इसी तरह जो है म्यूजिक का सुनना और ये जो है पेट में हराम डालना, बड़े आराम से लोग कह देते हैं जी वो मैकडॉनल्ड के खाने के ऊपर हमने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, हराम खाने के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। आप खुद सोचे कि कोई चीज नापाक हो तो चाहे उसको जितने मर्जी आप रैपर में डाल दें तो वो पाक तो नहीं हो जाएगी। गंदगी को आप जो है किसी अच्छे से रैपर में डाल दें तो क्या हो जाएगा, गंदी रहेगा। तो जब अल्लाह ताला ने उसको हुक्मन नापाक किया है, हुक्मन उसको जो है हराम किया है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के मुकाबले में किस तरह से उसको पाक कर रहा है। एक तरफ अल्लाह का हुक्म होता है और दूसरी तरफ से बंदा अपनी ओपिनियन बना लेता है, तो इस तरह से तो भाई बात नहीं बनेगी। तो अब जब वो इन चीजों से बचने का इरादा करेगा तो साफ जाहिर है सब्र करना पड़ेगा। और आखिरी चीज कि इम्तहाने इलाही पर सब्र करना, अल्लाह की तरफ से आया हुआ कोई इम्तहान, कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी कोई बिजनेस लॉस हो जाता है, जॉब लूज हो जाती है, कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं वो बातें ऐसी करते हैं, कोई ऐसा रिलेशन बहन का, भाई का, बीवी का, खामद का, बेटे का, बेटी का, नेबरहुड, कहीं ना कहीं से इंसान को कोई तकलीफ आ गई तो इस तकलीफ के ऊपर भी सब्र करना पड़ता है। घरों में मौत भी आ जाती है तो हुक्म हुआ कि सब्र करना पड़ता है। तो जो बंदे सब्र करते हैं तो भाई अल्लाह ताला फिर इनको अजर देते हैं, अल्लाह रिवार्ड देते हैं। तो ये है तीन चीजों के ऊपर सब्र करना पड़ा, एक तो ताते इलाही पर यानी अल्लाह की इबादत करने पर सब्र करना पड़ता है, दूसरा तर्क के मासियत में सब्र करना पड़ता है गुनाहों से बचने के लिए सब्र करना पड़ता है, और तीसरी चीज कि अगर उसके बाद भी कोई इम्तहान आ जाए तो इस पर भी सब्र करना पड़ता है। और ये साबिर को अल्लाह ताला अजर देते हैं, और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब्र मेरी चादर है, ये जैसे मुझे एनवेलप किया होता है, इसने सराउंड किया होता है और इसके अंदर मैं हर वक्त रहता हूँ, ये चादर की मानद होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी। तो इंशाल्लाह अगले जुमे भी इसी मजमून को मजीद बयान करेंगे। अभी इस वक्त जो है माशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लें, खत्म हाजवान पढ़ लेते हैं, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।